ശാന്തിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ സദാമയം തദാസി സ്വപദാംബികം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ദയാമയ ദ്വാസമി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
तो पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया था
कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने योगा लैडर या योगा सीढ़ी के रूप से उन्होंने स्ट्रेटेजी वाइज प्लान किया है भगवान ने. जैसे वेदों में हमने चर्चा किया था कि वेदों में अधिकतर कर्मकांड की बात है. कर्मकांड में जनरली ऐसा बताया जाता है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, और अधिकतर लोग इसी कर्मकांड के प्रभाव में कर्म करते रहते हैं. वो लोग ऐसा समझते हैं कि वेद का अर्थ होता है अपनी इच्छा पूरी करने के साधन, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का साधन, ऐसा वो लोग समझते हैं. लेकिन भगवान चाहते हैं कि इन लोगों को सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप वो लोग का शुद्धिकरण हो. क्योंकि अगर पशु जैसे आपका योगा लेटर में जो स्टेप से एकदम जो ग्राउंड लेवल था वो था एनिमल, पशुमय जीवन जनरली तमोगुण के आधार पर होता है, तमोगुण ही होता है, और फिर धीरे 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 उनकी वृद्धि रजोगुण में होती है, और रजोगुण से फिर धीरे धीरे वो लोग सत्वगुण तक जाते हैं, तो उसके बाद फिर विशुद्ध सत्व. तो तीन गुणों के आधार से अगर देखोगे तो तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सत्वगुण, और फिर योगा लैडर में इसी तरह से मनुष्य की चेतना की वृद्धि होती है. तो पहला स्टेप हमने चर्चा किया था कर्मकांड के रूप में, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना अपना इच्छा पूरी कर सकता है कुछ अनुष्ठान या विधि विधानों का पालन करके. सूर्य की पूजा करोगे तो स्वास्थ्य के लाभ होगा, इंद्र की पूजा करोगे तो वर्षा की प्राप्ति होगी इत्यादि. अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उसके पश्चात हमने आगे का जो स्टेप भगवान जो चर्चा किए थे वो था कर्मकांड से कर्मयोग तक. कर्मकांड में मनुष्य भगवान से संबंधित नहीं होता, क्योंकि जब कभी भी योग शब्द का उपयोग होता है, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्मयोग हो, अष्टांग योग हो, कभी भी कोई आपसे योग बोलता है तो योग शब्द का अर्थ होता है जिसमें भगवान लक्ष्य होते हैं, उसी को योग बोलते हैं. जैसे आजकल जो योगा हो रहा है वो योग का अर्थ है ही नहीं. योग शब्द का अर्थ तभी होता है कि जब वो भगवान से जोड़ा जाता है, अदरवाइज वो योग नहीं है. तो कर्म कांड से कर्म योग का अर्थ होता है कि जिसमें मनुष्य फल से आसक्त होता है और कर्म से भी आसक्त होता है, किंतु अंततोगत्वा वो ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान है, ये वो जानता है. फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको फल से अनासक्ति हो सकती है, फल की इच्छा नहीं करता लेकिन कर्म में आसक्त रहता है, तो निष्काम कर्मयोग तक आता है. कर्मयोग में दो प्रकार है, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, दो प्रकार है. एक में फल की आसक्ति है, दूसरे में फल की आसक्ति नहीं है. तो निष्काम कर्मयोगी अपने फल कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करता है, तो इस तरह से वो कर्म दोष से मुक्त हो सकता है। वो अपने कर्म के फल भगवान को अर्पण, यत करोषि दशनासि चोषि दासि, जो अर्जुन तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, दान करते हो, तब करते हो, सब मुझे अर्पण कर दो। तो वो निष्काम कर्म योग के मंच पे स्थिर रहता है, और उसके बाद फिर जब ज्ञान की वृद्धि होती है उसके, तब वो फल की आसक्ति से तो पहले ही छूट गया था, लेकिन अब कर्म की आसक्ति से छूट जाता है। फिर वो कर्म का त्याग कर सकता है, अर्थात संसार का त्याग करके वन में जा सकता है, संन्यास ले सकता है, अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर सकता है वो। लेकिन उसमें भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, और वो हरेक वस्तु अपने ज्ञान के आधार पर करना चाहता है, इसलिए उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहा जाता है। और ज्ञान योगी व्यक्ति जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, फिर वो अष्टांग योग का सहारा लेता है, जिसमें वो प्राण अपान व्यान सुदान इस प्रकार से जितने जो आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, इसका उपयोग करता है, और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंचता है, और समाधि की अवस्था के पश्चात उसकी भक्ति योग में एंट्री हो सकती है, स्टेप वन हो सकता है। तो ये हुई योगा लैडर, इसके आधार पे एक स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति की प्रगति हो सकती है। लेकिन इस योगा लैडर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भक्त का संग प्राप्त हो जाए या भगवान की निष्कारण दया प्राप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति किसी भी अवस्था से, चाहे वो पशु की अवस्था हो, तो भी वो भगवान के भक्ति योग में जुड़ सकता है। उसको ये योगा लैडर के सारे स्टेप्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा उसको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते। अर्थात अभी आप ये समझ सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार आप अभी कर सकते हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि योगा लैडर चैतन्य महाप्रभु ने स्किप करवा दिया। कितना बड़ा था ये, तो इसको फॉलो करेगा कोई व्यक्ति तो कितने जन्म लग जाएंगे इसको फॉलो करने में, तो है ना। तो इतनी कठिन तपस्याओं और समस्याओं का भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक मिनट में इसको हटा दिया, और सीधा ही जाल देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, सीधा कृष्ण उपदेश दे दिया। और भक्त जो होता है वो इन सब में इसलिए नहीं फंसता, क्योंकि कर्म में इच्छाएं भरी होती है, कर्मयोग में, ज्ञान योग में मुक्ति की इच्छा होती है, कर्म में फल की इच्छा होती है, ज्ञान योग में मुक्ति की इच्छा होती है, अष्टांग योग में सिद्धियों की इच्छा होती है, और इसलिए ये तीनों ही लोग इच्छाओं से ग्रस्त होने के कारण उन लोगों का मन अशांत रहता है। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति जिसका मन शांत रह सकता है वो है निष्काम, अर्थात कृष्ण भक्त। उसके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है शेष, इसलिए वो व्यक्ति स्थिर रह पाता है। ये एक संक्षिप्त ओवरव्यू हमने आपको योगा लैडर का बताया। भगवान अभी बताएंगे आगे चौथे चैप्टर में, पांचवें चैप्टर में, छठे चैप्टर में, और आप फिर इसके ऊपर खुद होम घर पे इसके ऊपर वर्क करके आप योगा लैडर को अच्छे से आपके माइंड में उसकी पीपीटी बना करके रख लो माइंड के अंदर, ये योगा लैडर किस तरह से काम करता है। फिर आप तुरंत समझ जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तुरंत आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति योगा लैडर में कहां पर स्थित है, तुरंत समझ जाएंगे आप। तो 24वें श्लोक में भगवान ने जो बात हुई थी, जिसमें अर्जुन की आर्गुमेंट को डिफीट कर दिया था भगवान ने, और भगवान ने कहा था कि पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था, कौन से राजा, जनक राजा। यहाँ पर जो बात चल रही थी वो यह थी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कर्म अच्छे से करते हैं, कर्म योगी होते हैं, अच्छे से कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योगी होते हैं, जो फल की आसक्ति से मुक्त होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल दिया जनक राजा का। वो लोग भी कर्म करते हैं केवल उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल भगवान अपना दे रहे हैं, भगवान अपना निजी एग्जाम्पल देते, मुझे भी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो हमारी चर्चा यहाँ पर ये भी हुई थी लास्ट टाइम कि एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। तो अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है, कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकता है? एग्जाम्पल के साथ
हाँ, तो आप एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हो कि कुछ लोग अनुकरण करते हैं, है ना। जैसे मैं जानता हूं वृंदावन में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण बताता है, तो वो कृष्ण है। और उनके आस पास में किसी भी पुरुष को आने की परमिशन नहीं, क्योंकि कृष्ण के पास में केवल गोपी ही आ सकती है। तो उनके आसपास में उनका सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी, जो कुछ भी है वो सब गोपियां ही है। लेकिन वो इतना ऐसा ढोंगी आदमी है, हालांकि जनरली इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो शास्त्र के विधि विधान को फॉलो नहीं करते, वो लोग किसी सिद्धांत को मानते नहीं है, इसलिए कई बार इन लोग को सहजिया कहा जाता है, क्योंकि वो लोग शास्त्र को समझते नहीं है, शास्त्र को मानते नहीं, आचार्य को समझते नहीं, आचार्य को मानते नहीं। तो ऐसे लोग सहजिया होते हैं और उनका एक ही मात्र धंधा होता है अधिक से अधिक स्त्री का भोग करें और धन का उपार्जन करें, ये यही एकमात्र उनका उद्देश्य होता है। तो ये हुआ इमिटेशन, ये हुआ अनुकरण। अब अनुसरण किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि अनुसरण, एग्जाम्पल, यस, ये भी अच्छा पॉइंट है। उन्होंने गुरु का चयन किया, उन्होंने 4:30-5 बजे उठ के भगवान अपना ध्यान करते थे, यस, संगीतन चैतन्य महाप्रभु सिखाया। प्रभु एक पॉइंट बताया, इससे अच्छा एक पॉइंट याद भी आया, जैसे भगवान का अनुकरण नहीं किया जाता, अनुसरण किया जाता है, इस तरह से गुरु का भी अनुकरण नहीं किया जाता, अनुसरण किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु का अनुकरण करेंगे, प्रभुपाद किसी को गधा बोल देंगे तो प्रभुपाद को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप किसी को गधा बोल दोगे तो आपको उठा के पटक देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट से गधा टू एनीबॉडी। तो गुरु का अनुकरण नहीं किया जाता, गुरु का अनुसरण किया जाता है, ये जो बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, अपने आचरण से सिखा। जैसे रामचंद्र भगवान, रामचंद्र ने मर्यादाओं का पालन किया, अपने पिता की इच्छाओं को अनुसरण किया, पिता जो बोले वो किया, बलिदान दिया, त्याग किया, भरत को क्षमा कर दिया, कई कई को कभी दोष देखा ही नहीं, कई कई में कभी दोष नहीं देखा। तो ये सब चीज ऐसे वेरी हाईली वैल्यूड है, ये वेरी हाई वैल्यू। कई कई जैसी माता को कभी दोष देखना भी नहीं, देखा भी नहीं उन्होंने, ऐसा नहीं कि मन में एक बार भी विचार है कि कई कई तुमने मेरे पिता को ऐसा किया और तुम्हारे कारण आज मुझे जाना पड़ा वनवास और इसके कारण पिता का देहांत हो गया, ये सब एक % भी ऐसा विचार उनके मन में नहीं आया। दैट्स फॉर हाईली वैल्यू। भगवान अपना ये बताते हैं कि किस तरह से कैसे मूल्य, जीवन मूल्य होने चाहिए मनुष्य के। हम तो हमें कोई थोड़ा सा भी अपमान करते हैं तो हम तो सीधा पहले पे देला हो जाता है ना? लेकिन क्षमा कैसे दी जाती है, क्षमाशील कैसे बना जाता है, वो रामचंद्र दिखाया, क्षमाशील कैसे बना।
भगवान कदाम जी ने क्या कहा कि अगर आज विभीषण आके शरणागत हुआ है तो मैं उसको लंका दे रहा हूँ, कल जाकर के अगर रावण शरणागत हो गया और मुझे क्षमा मांगेगा तो फिर मैं उसको मेरा अयोध्या दे दूंगा। बट आपको अगर हमें ऐसा बताया जाए कि आप ऐसा करोगे तो हमें ये हजम नहीं होगी बात, ऐसे कैसे कर सकते कोई है? गॉड, वो भगवान है। तो अनुसरण और अनुकरण में ये बहुत बड़ा अंतर है। कृष्णा स्वयं संतुष्ट है इसलिए उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं। तो स्वयं संतुष्ट है, भगवान के धाम में किसी चीज की कमी है। लक्ष्मी सहस्त्र तो संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुष, हजारों लक्ष्मियां उनकी चरण में सेवा देने के लिए लाइन में खड़ी रहती है, मना कर देते हैं बेटे रुको अभी थोड़ी देर, अभी अंदर नहीं आ सकता, लाइन में खड़ी रहती है। लक्ष्मी देवी को केवल रासलीला में एंट्री पास लेने के लिए तपस्या करनी पड़ी, रासलीला में भाग नहीं लेने का था, केवल देखने का था, ऑडिशन देखने का था, बस विजन दर्शन करना था, तो पास लेना था, उनको टिकट चाहिए थी रासलीला में एंट्री लेने की, तो पास के लिए उन्होंने तपस्या किया, नहीं मिला। तपस्या करने के पश्चात नारायण प्रकट हुए, नारायण को पूछा कि मैं क्या चाहते हो, नारायण ने कहा क्या चाहते हो आप, तो बोले मैं तुम्हारे रासलीला में प्रवेश करना चाहते हो, दर्शन करना चाहते, तो बोले तुम्हारी तपस्या का एक ही परिणाम मिल सकता है क्या, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ कि कहाँ जाना है, बस इतनी तपस्या करने के पश्चात फेल, क्या बताया, बोले इतना तब करने की क्या आवश्यकता थी, गोपियों के पास चली गई होती तो बहुत ज्यादा काम करना, ठीक है रिकमेंडेशन लेटर ही लेना था ना गोपियों का कि उनको आने दो। वैसे एक बार अकबर, ये सच सत्य घटना है, अगर आप चेक करोगे वृंदावन में ये सब म्यूजियम में पाया जाता है सब इश्यू में। अकबर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छा भक्त था अकबर, दिस इज हिस्ट्री। अगर आप आज भी देखोगे, आप कृष्णभद्रा मंदिर को देखा है ना आपने, वृंदावन मंदिर कृष्णभद्रा, कृष्णभद्रा मंदिर से अगर आप बाहर निकलते हो जो मेन रोड है उसके ऊपर लेफ्ट साइड जाते हो लोही बाजार की साइड, वो रास्ता आपको पता होगा राइट, आप लेफ्ट साइड जाते हो तो थोड़े आगे जाकर के आपको एक बड़ा बोर्ड पढ़ने में आता होगा, पहले अभी तो है कि नहीं पता नहीं, अभी होगा भी, वृंदावन वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुना देखा होगा शायद आपने वृंदावन रिसर्च, है ना, अंदर भी गए। अच्छा, वहां पर अगर आप जाते हो, अभी तो पता नहीं है कि न्यूज शिफ्ट कर दिया कि नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जो पेपर्स अकबर ने डोनेशन में दिए थे, गिफ्ट में दिए थे, और जिसके ऊपर रूप सनातन गोस्वामी ने अपने हाथों से जो ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथ अभी भी उधर है, स्टिल देयर, और बहुत फॉलो करते थे अकबर, हालांकि उसके फॉलोअर्स सब बेकार थे, उन्होंने तोड़ दिया मंदिर हमारे गोस्वामियों के औरंगजेब में, लेकिन अकबर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को बहुत मानता था। सनातन गोस्वामी को एक बार दिल्ली बुलाया था अपने महल में भागवत सुनाने के लिए, रूप गोस्वामी मना कर दिया, सनातन गोस्वामी बहुत दयालु हुए, सनातन गोस्वामी गए दिल्ली उसको सिखाने के लिए भागवत, उनको भागवत सुनाया था। एक बार वही अकबर सेवा कुंज में, राधा दामोदर मंदिर है ना, राधा दामोदर मंदिर में एक बार आया था अकबर, और वहां पर रूप सनातन से बातचीत कर रहे थे, तो एक बार इनको कहा सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को कहा कि मेरे पास इतना सारा धन है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, तो मैं आपको कुछ सुविधा देना, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप बोलो क्या कर सकता हूँ मैं, तो आप बोले जो आपको सेवा करना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको जैसी इच्छा है करिए। नहीं बोले मैं थोड़ा रिनोवेशन करना चाहता हूँ, वृंदावन धाम में कुछ बताइए मैं रिनोवेट करके दिखाता हूँ, तो रूप गोस्वामी अच्छा लगे, बोले रिनोवेट करना चाहते हो चलो मेरे साथ, तो वे वो उनको ले गए सेवा कुंज, आपने देखा है सबने राइट, राधा दामोदर मंदिर देखा है ना, राधा दामोदर मंदिर से पैदल वहां पर तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये इस्कॉन मंदिर नहीं था इसलिए इतना भीड़ नहीं था, ट्रैफिक जाम नहीं होता था, तो वहां पर सेवकों से पैदल गए यमुना के तट पे, दोनों अकबर को लेकर के, और चलते चलते बहुत सारी बातें की। और फिर अकबर को लेकर के जब यमुना के तट पे आए तो बड़ी सुंदर यमुना, और वो जो आपने शायद देखा होगा अभी सरकार अभी कुछ रेनोवेट कर रही है घाट में, देखा आपने नया पेंटिंग्स बनाया है, नया कंस्ट्रक्शन किया है यमुना के तट पे, नया नया हुआ अभी 2-3 साल पहले, आपने देखा होगा शायद। वो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने सुंदर घाट होते थे पहले, इतने सुंदर घाट होते थे यमुना के, बहुत सुंदर, वेरी नाइस स्ट्रक्चर। तो ऐसे घाट में वो जब जा रहे थे तो फिर जाते जाते कहा कि देखो भगवान तो स्वयं संतुष्ट है, फिर भी अगर आप चाहते हो रिनोवेट करने के लिए तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो साथ साथ। तो साथ साथ गए तो फिर एक क्षण के लिए हमारे आचार्य ने प्रभु गोस्वामी उन्होंने उनको आशीर्वाद किया, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए आशीर्वाद दिया, और टेम्पररी उनको दिव्य चक्षु दिए, ट्रांसेंडेंटलाइज अकबर को। और एक सेकंड में वो देखा कि वो जहां खड़े थे वो भी चिंतामणि बन गए, गोल्डन पूरा, और बड़े बड़े घाट में बड़े बड़े जूस रूबी और नीलम और हीरे और ऐसे सब जड़े हुए थे, कभी उन्होंने लाइफ में देखे भी नहीं थे ऐसे ऐसे ज्वेल्स थे। और फिर एक स्थान पे छोटा सा एक मणि निकल गया था, एक स्थान पे एक घाट के ऊपर। तो अकबर को कहा कि ये एक मणि यहाँ पर रिनोवेट करने की आवश्यकता है, यहाँ से वो मणि निकल गया है, आप इसको रिपेयर करवा दो। तो अकबर चौंक गया, वो एक मणि की कीमत, अकबर चाहे अपनी सारी संपत्ति लगा दे फिर भी वो एक मणि खरीद नहीं पाएगा बाजार से, ऐसा कीमती मणि था वहां पर, सारी संपत्ति लगा दे। और तुरंत अकबर समझ गया कि मेरा अभिमान था ये, मैं बहुत धनवान हूं। तो तुरंत गोस्वामी के चरण में, गोस्वामी के चरण में गिर गया। जैसे ही उनको यह अनुभव हो गया कि मैं गलत किया, तुरंत वृंदावन जैसा था वैसा दिखने लगा, इसमें जो चिंतामणि दिख रहा था वो नहीं, जैसे हमें दिखता है वैसा दिखने। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कृष्ण इज सेल्फ सेटिस्फाइड। कृष्ण इतने सेल्फ सेटिस्फाइड है कि हमारी किसी चीज की उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्या देंगे हम, दे दे के क्या देंगे, हमारे पास है भी क्या देने के लिए, वॉट वी विल गिव, कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए, बट स्टिल इज एक्सेप्टिंग, फिर भी स्वीकार करते हैं हमारे पास से। सो नाउ कृष्ण भी ये बता रहे हैं कि क्यों फिर भी मनुष्य, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो तो फिर भी वो कर्म क्यों करेगा, उसको क्यों क्यों कर्म करना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 25, लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए, लोग आप जो भी कर्म करोगे लोग देखेंगे। जनरली पहले, अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने बताया था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तेवे सर्वजना, राइट। जो लोग श्रेष्ठ लोग होते हैं उन लोग को साधारण जन समय जो समाज होता है वो तो फॉलो करता है, सीधा सीधा सा हिसाब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वृत्ति हमारी कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, हमारे नेता जैसा करते हैं वैसे ही प्रजा करते हैं, जैसा राजा तथा प्रजा, ये नॉर्मल सिद्धांत है। तो इस तरह से जो विद्वान लोग होते हैं वो अनासक्त रहकर के भी कर्म करते हैं केवल दूसरों के लिए, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू लीड पीपल, लोगों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं। अगर ऐसे महात्मा कभी कर्म न भी करे तो उनको कोई पाप नहीं लगता है, कोई अपराध नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी कर्म करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लोग देखेंगे कि अर्जुन अगर युद्ध छोड़ के जा सकता है तो मैं भी युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भी अपनी मनमानी करूंगा, मैं भी अपना स्वार्थ देखूंगा। यद्यपि अर्जुन को कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन एक साधारण व्यक्ति को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अर्जुन के पास ज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञान के बिना कर्म का त्याग करेगा तो क्या करेगा, गांजा पिएगा तो क्या करेगा, ऐसा वो एग्जांपल होता है ना कि सब गोपियों को इकट्ठा किया, वो ऐसा करेगा फिर वो। अगर उसको ज्ञान नहीं है और कर्म को त्याग कर देता है तो फिर बंदर बनेगा, बंदर वृंदावन का बंदर बन जाएगा वो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर निराश होकर के, हताश होकर के, दुखी होकर के फिर से भोग में गिर जाएगा, फिर अस्पताल खोलेगा, ऐसे सब काम करेगा, फिलैंथ्रोपिक काम करेगा, जन सेवा का काम करेगा, क्योंकि उसकी इंद्र तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसी आधार से इंद्र तृप्ति करेगा और अपने आप को ये कह के संतोष हो जाएगा उसको कि मैं लोगों के लिए कल्याण का कार्य कर रहा हूं, भूखे लोगों को खाना दे रहा हूं, बीमार लोगों के लिए अस्पताल बना रहा हूं, तो ये तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं इस तरह से ये कार्य को आजमाता हूं। ऐसे लोगों को सरकार भी प्रमोशन करती है, ऐसे लोगों को सरकार सब प्रकार से सहायता करती है, तो ऐसे व्यक्ति फिर फूलते हैं, फालते उनका वृद्धि हो जाता है, फिर ऐसी बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन जाती है कि जो लोग का उद्देश्य इंद्र तृप्ति ही होता है, क्योंकि भक्त तो है ही नहीं तो सिद्ध कैसे होंगे, तो उनके हृदय में इच्छा तो यही होती है भोग करने की। और एनजीओ में भी अधिकतर केसेस में केवल सबकी जेब ही भरी जाती है, ये कड़वी रियालिटी है, लेकिन फिर भी उसमें सब अपना बैंक बैलेंस ही भरते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों का जिम्मेदार कौन रहेगा, वो व्यक्ति जिसने गलत उदाहरण लोगों को सिखाया वो उसका जिम्मेदार है। तो ज्ञानी ऐसा नहीं करता, ज्ञानी समझता है कि मैं करूंगा तो सब करेंगे ऐसे, इसलिए मुझे करने दीजिए, मुझे लोगों को पाल सिखाओ। सो नाउ इसी इसको भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं 26 में, पढ़िए।
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके, नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो।
हाँ, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, बड़ा आसान है, सो सिंपल। अगर आप किसी के पास जाते हो और आप उसको पहले ही दिन आते हो, समझ लो जन्माष्टमी में इतने सारे लोग आएंगे, आते ही कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर आया, कहते मूर्ख हो तुम, मूर्ख माया में गिरे हो, अज्ञानी हो तुम, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, छोड़ दो ये सब माया है, कृष्ण का भजन करो, मामेकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं ऐसा। अगर वो व्यक्ति ने आपकी बात मान ली तो हैवोक हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने अगर आपकी बात मान ली तो उसके केस में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो अपनी जिम्मेदारी भी छोड़ देगा और भक्त भी बन नहीं पाएगा, इमैच्योर रिनाउंसिएशन, अपरिपक्व त्याग। माधव गाना
बोलते थे अच्छे
धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगर आप उसको पहले ही मना कर दोगे तो विचार कैसे आएगा, आप उसको बोल दो कि तुम्हारे साथ मरने के बाद कुछ नहीं आएगा, तुम सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाओगे, जाओ तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, एक ही रास्ता है तुम्हारे कार, अगर तुम भक्ति करो नहीं तो नरक में जाओ, तो बेचारा घबरा जाएगा, राइट। या अगर आजकल तो लोग अहंकारी होते हैं, अहंकारी होगा तो वो दो चार गालियां सुना करके भागेगा। सो कृष्ण यहाँ पर दूसरा स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, क्या कह रहे हैं उसको, उसको ये मत कहो कि तुम गलत कर रहे हो, उसको उसकी क्षमता के आधार से उसको स्टेप वन से स्टेप टू ले जाओ, बस ज्यादा मत करो उसको, एक एक्सपर्ट टीचर होता है स्कूल में, आप देखा होता है राइट, वो क्या होता है कि विद्यार्थियों की क्षमता समझ जाता है कि ये विद्यार्थी इससे अधिक समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से अध्यात्मिक गुरु भी इस प्रकार के होते हैं, वो शिष्य की क्षमता समझ जाते हैं कि ये शिष्य को अगर मैं कह दूंगा कि तुम ये कार्य करो तो गुरु मुख पद में व्याख्या करने का प्रयास करेगा लेकिन बेचारा वो कर नहीं पाएगा, तो उसको क्या बोले तुम इतना करो, बस इतना करो,
अब तो बस इतना ही करना है, इससे अधिक कुछ नहीं,
तुम्हारा अधिकार इतना ही है, कर्मण्य वा अधिकार, ये तुम्हारा अधिकार इतना ही है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ही है जितना गुरु आपको अभी बता रहे हैं, बस उसको फॉलो करो, अधिक मत करो, लेकिन साथ साथ में क्या करो, मा फलेषु कदाच, ये सिखाओ उन लोग को कि कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास, ये हमें सिखाना चाहिए। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, उन लोगों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से भक्ति योग में कर्म किए जाते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीज दिखानी चाहिए, प्रैक्टिकल किस तरह से आपके कर्म के फल आप भगवान को दे सकते हैं। ऐसा होता है ना कि एवरीथिंग फॉर एवरीवन, सबके लिए सब कुछ ऐसा होता है राइट, एवरीथिंग फॉर एवरीवन, जैसे अगर भगवान के पास कोई आता है तो उसको सब, हर एक प्रकार का व्यक्ति को सब अपना लाभ मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जो आज अपने माया को त्याग कर सकते हैं इसकी क्षमता नहीं है, जो आज संपूर्ण रूप से भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाएगा, जो व्यक्ति आपके बताए गए मार्ग पर आज अचानक से नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? कृष्ण भावनामृत इस्कॉन क्या ऐसे व्यक्तियों को कुछ गाइडेंस दे सकती है कि जो लोग लेमैन एकदम अनजान व्यक्ति है और वो पूरा आसक्त है मटेरियल इच्छाओं से, क्या गाइडेंस देगी? तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा है तो आप जनरली क्या कहोगे, भगवान ने तीसरे अध्याय में ये कहा, ये गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है कि तुम जो करते हो उसके फल को धीरे 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 भगवान के चरणों में अर्पण करके निष्काम कर्म से निष्काम तक पहुंचने का प्रयास, अधिक मत सोचो। ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधि, ये नहीं कह सकते, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, तुम जानते नहीं इसको शुद्ध, हमारे कुछ भक्त परिपक्व नहीं होते तो लोग ऐसी गलतियां कर बैठते, पहले ही दिन बिना उनकी क्षमता देखे आप उसको बताओगे कि आपको आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को क्या सिखाया था, वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, कौन रामानंद राय, कौन चैतन्य महाप्रभु, आप समझे? कहने का तात्पर्य क्या है इसके पीछे कि प्रभुपाद हमेशा बेसिक लेवल के लेक्चर्स ज्यादा दिए, अगर आप देखना जो लेक्चर्स प्रभुपाद के है ना बहुत बेसिक लेक्चर्स, सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है उसमें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं लेकिन बहुत ही बेसिक होता है, एक अनजान व्यक्ति भी समझ सकता है। वी शुड ट्राई टू प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंगली, इसी तरह से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, पहले हमें अपने कर्म से उसको सिखाना चाहिए, हमारा कर्म से वो देखेगा, वो ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं भी वो कर रहा हूँ वो भी वो कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा है, वो इतना सुखी और मैं इतना दुखी क्यों हूं, मैं भी ऑफिस में जाता हूँ वो भी ऑफिस में जाता हूँ लेकिन वो एकदम प्रसन्न रहता है और मैं हमेशा रोता रहता हूँ, ऐसा क्यों? चलो आज एक बार पूछ ही लेते हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे तो पूछ ही लेते हैं, ये क्या बात है तुम, ऐसा क्या है कि तुम दुखी इतना सुखी कैसे रहते हो, हमेशा जुबिलेंट चेहरे पे हमेशा चमक रहती है, ऐसा कैसे? तो वो क्या बताएगा, देखो भाई मैं ऑफिस में किसी को पूछ तो करता नहीं लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ इसका रहस्य क्या है, क्या रहस्य है, मैं मेरे कर्म का जो भी फल प्राप्त होता है ना, धन कमाने से फैमिली चलाने से जो कुछ भी मेरा फल होता है कर्म का फल, वो सब मैं भगवान को अर्पण कर देता हूँ, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। सोचे बस इतना करने से तुम प्रसन्न हो जाते हो, बोला आप करके देखो विश्वास नहीं है तो करके देखो, ट्राई करके देखो। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल दिया खुद का कि मैं कर्म करता हूँ, कर्म फल को भगवान को अर्पण करता हूँ और मैं हमें जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। ये एग्जाम्पल उसने देखा, नहीं मैं कैसे करूँगा ये, अरे ट्राई तो करो। शुरू किया, धीरे 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 वो भी अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना शुरू कर दिया। इस तरह से आप उसको प्रचार कर सकते। तो ये तरीका होना चाहिए, फर्स्ट यू फॉलो एंड यू शो हाउ टू डू इट। पहले आप खुद करके दिखाओ कैसे किया जाता है। जैसे आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज सिखाते हो, जैसे कुकिंग है, तो कुकिंग में आप क्या करते हो, अगर किसी को सिखाना है तो पहले एक बार आप करके दिखाओ, देखो ऐसे कुकिंग किया जाता है, राइट। फिर आप बताओ ठीक है ये दो तीन चीज बना करके दिखाओ। दिस इज द वे टू टीच, फर्स्ट यू हैव टू शो। तत्वदर्शी भी भगवान कहते हैं ना भगवदगीता में, तत्व पहले तत्व का दर्शन करेगा फिर वो सिखाएगा, ऐसे ही नहीं सिखाएगा। तो तीन चीज हमने यहाँ पर चर्चा की, एक तो है कर्मकांड, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। और अंत में जो भगवान चर्चा कर रहे हैं वो है निष्काम कर्मयोग। और ये तीनों का जो आधार है, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, इसका आधार, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड होगा, आसक्ति के आधार पर, राइट। ये तभी डिवाइड हो पाएगा। अब भगवान बताते हैं कि जो लोग आसक्त होते हैं बहुत ज्यादा, इस प्रकार के जो आसक्त लोग होते हैं उन लोगों का विचार कैसा होता है, वो कैसे किस प्रकार का विचार रखने वाले होते हैं। बोलिए,
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
हाँ, ये जो होते हैं जल्दी, इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जो आसक्त होते हैं और जो ज्ञान से, ज्ञान जिनके पास नहीं होता है, ऐसे लोग जनरली क्या करते हैं, वो लोग अपने ही स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं और फल में आसक्त होते हैं। और ऐसे लोग का विचार कैसा होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व, प्रकृति क्रिया, वो लोग समझ नहीं पाते। और ऐसे लोग सोचते क्या है, प्रकृति कार्य करते वो समझ नहीं पाते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये प्रसिद्ध श्लोक है ना, आई डोंट नो वेदर इज केएमबी है, राइट, वही है ना, प्रकृति क्रियमाण। अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम, मैं करता हूँ, मैं, मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, मैं करता हूँ। आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा, 99.9% लोग ऐसा मानते, प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माण सब, वो लोग इसको समझ नहीं सकते कि प्रकृति कौन करता है। मैं तो कभी रजोगुण के प्रभाव में आ जाता हूँ, कभी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है, जैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। अब ये वो समझ नहीं सकता कि ये कर्ता वास्तव में कौन, वो अपने आप को कर्ता मानता है और वो ही करता है ऐसा, मेरे कारण सब कुछ होता है। इसको बोलते अहंकार विमूढ़। मूड एक होता है, मूड गधा होता है, मूड जो होता है ना वो गधा होता है। जब किसी शब्द के आके संस्कृत में वी शब्द का वी लग जाता है, वी तो स्पेशल, वी मूड स्पेशल मूड, विशिष्ट मूड, वी मूड मीन्स विशिष्ट मूड। कौन है, अहंकार विमूढ़, अहंकार से विमूढ़ होकर के करता हम, मैं करता। जैसे अकबर को तोड़ दिया ना, अकबर का अहंकार नष्ट कर दिया। भगवान को अपने भक्तों का अहंकार पसंद नहीं है तो ये विमूढ़ों का अहंकार कैसे पसंद होगा, भक्तों का सरदार विमूढ़ आत्मा। एक होता है दुरात्मा, एक होता है महात्मा, लेकिन ये है विमूढ़ आत्मा, ये मूर्ख व्यक्ति है, अपने आप को कर्ता मानता है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपने कर्म का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। जो कुछ भी अच्छा होता है वो क्रेडिट किसकी होगी, जो कुछ भी अच्छा नहीं होता वो क्रेडिट किसी होगी? भगवान की। जो कुछ भी बुरा होता है वो आपकी लीला अपरंपार। और जो कुछ भी अच्छा होता है बोले ये तो देखो मैं था इसलिए हुआ, मैं कारण होता है। कई बार भक्त लोग इसमें फंस जाते हैं। भक्त लोग जैसे एक स्थूल होता है ऑब्स्टेकल और एक होता है सूक्ष्म ऑब्स्टेकल रुकावट। तो सूक्ष्म ऑब्स्टेकल जो होता है ना, जो आंखों से दिखता नहीं है, वो होता है अहंकार। मैं भोग करूंगा, मेरे लिए होना चाहिए, मैं इस जगह का स्वामी हूं, सत्ता मेरे पास होनी चाहिए, मैं जैसा कहता हूं वैसा होना चाहिए, विध अहंकार। भाई भगवान ने किसी अहंकार को पोषा नहीं है। आज तक कोई ऐसा भक्त हुआ नहीं कि भगवान ने उसके अहंकार को क्षमा किया हो। भगवान उसके अहंकार को एक बार तो आईना दिखाई देते हैं। किसी को अहंकार होता है, हनुमान जी भगवान के बहुत अच्छे काम में आते। एक बार सुदर्शन चक्र को अहंकार हुआ था, सुदर्शन चक्र को हनुमान हुआ तो भगवान ने हनुमान को बुला लिया। ऐसे एक बार अर्जुन को हुआ, एक बार भीम को हुआ, ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे पुराणों में कथाएं हैं, ऐसी महाभारत में है ऐसी कथाएं कि कई भक्तों को अभिमान हुआ तो भगवान ने सारे अभिमानों को नष्ट कर दिया। तो ये आप हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप हमारे मन में कहीं पर भी ये अहंकार की बदबू आ रही हो, बैड स्मेल, तो देखना कभी ना कभी भगवान हमें भी आईना दिखा देंगे और फिर तब हमें पछतावा होगा कि मैं सोच रहा था कि मैं सब कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मुझसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। करता हम एक होता है अहंकार विमूढ़ आत्मा, और फिर अहंकार से विमूढ़ होकर वो जो भी इच्छा प्रस्तुत करता है भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कैसे इच्छा पूरी करते हैं? वे यथावाम प्रवचन्ते तां सुते बजाते। भगवान चाहते नहीं ऐसा कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी हो, लेकिन भगवान ने एक नियम बनाया हुआ है, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं उस भाव से उसको रिसिप्रोकेट करूंगा। अगर भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी सहायता नहीं करते तो भगवान अपने वचन से गिर जाते। इसलिए जो कर्ता कौन है यहाँ पर ये एक प्रश्न है, या पूरे तीन अध्याय में ये बात आएगा कि एक्चुअल डूअर, एक्चुअल कर्ता कौन है? मैं करता हूं, भगवान करता है, प्रकृति के तीन गुण करता है, कौन है एक्चुअली कर्ता? हाँ उसकी चर्चा आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है? तीन गुण, प्रकृति के गुण ही कर्म है, प्रकृति के तीन गुण करते। लेकिन सही इसको सही कैसे समझे? ये तीन गुण जो है वो भी किससे कंट्रोल में रहते हैं? भगवान के। जो जिसके सामने हम कठपुतली बन जाते हैं, ऐसे देवताएं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि, ये ब्रह्मा जी या फिर प्रकृति तीन गुण, ये सब भगवान के सामने कठपुतलियां, भगवान के आधार इशारे पे चलने वाले लोग। और ऐसे भगवान का हम शरणागत होते हैं, ऐसे भगवान की हम भक्ति में जुड़ते हैं। सो अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ योर कृष्णा, जिसको आप पूजा करते हो ना, ये तुम्हारे भगवान इतने महान है कि ब्रह्मा रुद्र चंद्र शिव सब उनके पास आकर के नतमस्तक हो जाते हमेशा। तो भगवान हमारे मूर्खता के कर्ता नहीं है, हमारे मूर्खता के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे मूर्खता के जिम्मेदार हम खुद है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द मटेरियलिस्टिक पर्सन हैज नो नॉलेज दैट अल्टीमेटली ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। भौतिकवादी व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की इच्छा से ही कार्य करता है। भक्तिवान ठाकुर इस क्वेश्चन बहुत सुंदर कहते हैं, भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कि कई बार हमें होता है ना, ये भक्त ऐसा क्यों है, ये भक्त ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, भगवान को आज लाल कलर का कपड़ा क्यों पहनाया, ये ऐसा क्यों है? बहुत सारे ऐसे मन में होते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, ओडी ओडी ऐसा क्यों कर रहा है। तो भक्तिवान ठाकुर इसके विषय में कहते हैं कि हरेक व्यक्ति, हरेक भक्त अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसमें हम बीच में कैसे बोल सकते, समझे? और कोई व्यक्ति कृष्ण को लड्डू गोपाल देखना चाह रहा है तो वाई शुड वी स्टॉप हिम? और कोई व्यक्ति कृष्ण को किशोर अवस्था में देखना चाहता है तो हम कौन होते हैं? एकदम द पॉइंट बिहाइंड दिस, कृष्ण के कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है, आपके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, उसको प्रेरणा किया जैसे उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। सो डोंट बॉदर, आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, सब कुछ सही हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। हाँ, अगर वो गलती कर रहा है तो अज्ञान में है, वो बात सही है। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल अंडर कृष्ण सुपरिटेंडेंट। चौथे चैप्टर में इसको डिटेल में बात आती है, चौथे चैप्टर में। भगवान अटैच, आसक्त कर्म करने वाले और निष्काम कर्म योगी या भक्त, उनमें क्या अंतर है वो भगवान यहाँ पर बताते हैं टेक्स्ट नंबर 28 में। देश का भेद जानता है वो इंद्र दुप्पे में नहीं फंसता, वो समझता है कि जो भी फल प्राप्त हो रहे हैं भले दिखने में चमकते हैं, इंद्रिय भोग चमकाट वाले होते हैं ना, बहुत चमकीले होते हैं इंद्रिय भोग, लेकिन इसका परिणाम ये आता है कि अंततः गत्वा मुझे कष्ट ही मिलने वाला है और मैं बंधा रहूंगा इसके कर्म बंधन में, इसलिए वो इसमें फंसता नहीं है। Somebody can read the purport. The knower of the absolute truth.
The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. He knows that he is part and parcel of the supreme personality of Godhead Krishna, and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or the other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence, he is meant to devote
doubted
his activities in devotional service to the supreme personality of Godhead Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma, and the supreme personality of Godhead, is called Tattvavid. For he knows also his own factual position in relationship with the supreme.
Yes. तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लास्ट में ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया कि ऐसा व्यक्ति जानता है कि वो भगवान के पूर्ण कंट्रोल के अंदर काम करता है, 100% अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्णा, इस तरह से वो काम करता है, और वो परम सत्य को तीन अलग अलग तरीके से समझता भी है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसके विषय में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है जो परम सत्य को जानने वाला है, तत्ववीत है, वो क्या सोचता है? ना मैं कोई गुण हूं और ना मैं किसी गुण का कोई पैदाश हूं, और मेरा इन गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। राधर प्रभुपाद कहता है कि अपनी जो ऑकवर्ड पोजीशन है अर्थात विसंगत परिस्थिति, उससे वो परिचित होता है। ये क्या है उसकी ऑकवर्ड पोजीशन? अपसाइड डाउन, माथा नीचे है पांव ऊपर है, और माथा नीचे होगा और पांव ऊपर होगा तो आप कितनी देर रह सकते हो? कभी शीर्षासन किया है? एक भी नहीं हो रही है शीर्षासन वाला। शीर्षासन किया कभी आपने? किया है शीर्षासन? और किसी ने किया है शीर्षासन? और कोई? आप शीर्षासन
योगा
तभी भी
तो शीर्षासन में पांव पांव ऊपर होते हैं, माथा नीचे होता है, और वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा मान लो कि यहाँ पर हमारे अचिंत्य दशरथी प्रभु अगर शीर्षासन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर राइट, माथा नीचे है और पांव ऊपर है, और तो माथा एकदम नीचे है ना, एकदम टचिंग द, वहां पर चंद्रनाथ प्रभु जाकर के अचिंत्य दशरथी प्रभु के एकदम सामने आकर के एकदम नीचे झुक करके उनकी आंखों के सामने आके कहते हैं, आर यू कम्फर्टेबल? तो कैसा लगा क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो? इम्पॉसिबल राइट, माथा ऊपर माथा नीचे पांव ऊपर है तो कोई कंफर्टेबल फील थोड़ी करेगा। इस तरह से हमारी सिचुएशन क्या है, हमारा पांव ऊपर है और माथा नीचे है, ये समस्या है, इसको बोलते हैं ऑकवर्ड पोजीशन। और हमारी सही पोजीशन क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये हमारी सही पोजीशन है। शीर्षासन करने वाले भक्त को जब वो खड़ा हो जाता है ना, बैठ जाता है, फिर आप उसको पूछो अब कैसा लग रहा है,
अच्छा लग रहा है,
दैट इज तो ही नोज द ऑकवर्ड पोजीशन, वो जानता है अपने ऑकवर्ड पोजीशन को, तो वो सकाम कर्म के लिए कर्म नहीं करता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, ये कर्म के फलों की भावना से मुक्त होने के लिए कर्म करता है, और धीरे 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 वो फिर भक्ति योग में अपने आप को स्थिर करता है और फिर वो भक्त बन सकता है, इस तरह से वो कार्य करता है। तो नाउ टेक्स्ट नंबर 29 इसके कंटिन्यूएशन में है, पढ़िए। हाँ, ऐसे अज्ञानी लोग जो होते हैं वो बहुत ही आसक्त होकर के कार्य करते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उनको अनसेटल नहीं करता है। अनसेटल का अर्थ क्या हुआ, विचलित कर देना। समझ लो कि एक अच्छा खासा व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का पालन करके घर चला रहा है, परिवार चला रहा है, नौकरी धंधा कर रहा है और काम कर रहा है एकदम, और वहां पर जाकर के कोई हरे कृष्ण वाले के पास मिल गया, उसको बात करने लगा, और हरे कृष्ण वाला कोई कच्चा भक्त होगा, कोई परिपक्व नहीं हुआ समझो, अगर उसने कुछ उसको उल्टा सीधा बताया और उसको ऐसा मन में ऐसा विश्वास करा दिया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो आप समझ लो उसका असर क्या होगा। वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि मैं भक्ति भक्ति करना शुरू कर दूं और घर बार छोड़ दूं। परम कई बार हम लोग कहते हैं यू नो, एक एक आई गिव एग्जांपल, क्विक एंट्री, बहुत तेजी से आते क्विक एंट्री, अचानक से पहले दिन मिला, दूसरे दिन तिलक लगाया, चौथे दिन धोती कुर्ता में आ गया, पांचवे दिन तो डांस कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, आप हो क्या रहे है? फिर आप उसमें दूसरा कोई तर्क लगाओ, पूर्व जन्म में भक्त होगा तो ये दो चार दिन के अंदर तो इतना परिवर्तन दिखाता है वो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और प्रभु मुझे ये भी करना है, भगवत गीता भी पढ़ना है, वो भी करना है, सब कुछ पता है। तो कई बार मेरे पास तो कई बार कुछ भक्त आते कहते हैं कि प्रभु ये तो इसका बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत फटाफट ये तो भक्ति को स्वीकार कर रहा है, तो फिर ऐसा कोई मुझे कह रहा है तो मैं कहता देखा सावधान, ऐसी बात बात बताओ, इससे डर लगता है।
क्यों?
जो जनरली जो क्विक एंट्री वाले आते हैं ना, बड़ा प्रोन टू क्विक एग्जिट, अचानक गायब हो जाते, अचानक पता नहीं कहाँ चला गया, अभी आता ही नहीं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक, कहीं ऐसे लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, ये आते हैं और भक्ति हरे कृष्णा करते हैं और बहुत ज्यादा ही उनके भक्ति का रंग दिखता है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा ही दिखता है, तो समझ लेना कि लंबा टिकेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है, बिना समझे कर रहा है, बिना समझे करेगा तो क्या होगा, गुजराती में कहा होता है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं, लंबा वाय टुक हो जाए, मरे नहीं मानो पड़े, सुना कथा ऐसा कहावत है। जैसे आपकी क्षमता नहीं है, आप आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप जानते नहीं हो कुछ, लेकिन आप वही सब करना चाहते हो जो एक वरिष्ठ भक्त या कोई एक आगे बढ़ा हुआ भक्त वो सब जो करते। अभी आपको उतना यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव रियलाइजेशन, आपको इतना त्याग नहीं है मन में, साक्षात्कार नहीं है कोई,
तो क्या करें?
तो क्विक एंट्री,
क्विक एंट्री,
बहुत जल्दी जल्दी भक्त बनता है और बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है, छोड़ देता है कृष्ण भक्त। तो इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस में अगर कोई भक्त बनता है ना, तभी आप समझ सकते हो कि इसका नींव सही जा रहा है, ये ग्रेजुअल होना चाहिए। तो ऐसी व्यक्ति को अनसेटल नहीं करना। प्रभुपाद सेज, मैन हु आर इग्नोरेंट कैनॉट अप्रिशिएट एक्टिविटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड देयरफॉर लॉर्ड कृष्ण एडवाइस अस नॉट टू डिस्टर्ब देम, सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, डोंट डू दैट, पॉइंट इज दैट। बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड, कॉन्सिक्वेंटली दे अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क इवन द पॉइंट ऑफ अप्रोचिंग इग्नोरेंट मैन, ट्राई टू एंगेज देम इन द एक्ट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग। भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, इसलिए यद्यपि भगवान ने उनको मना किया, फिर भी वो लोग धीरे 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 उसको कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास, रिस्क लेते हैं इसमें, होता है कभी कभी रिस्क होता है ऐसी चीजों में, क्योंकि अगर वो आपकी बात को मान करके वो कुछ संसार वंसार छोड़ दिया तो इसका जिम्मेदारी आपको लगेगा ना, आपके कारण हुआ, लेकिन उसको समझाना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कैसे समझाना ये सीखना चाहिए, कैसे किसी को समझाना ये सीखना चाहिए। अचानक समझाने में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बात को मान तो लिया उसने, लेकिन बाकी सबकी बात को टाल दिया, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर घर पे जाएगा, माँ को बोलेगा, माँ पूछेगी बेटा आज कौन सी सब्जी बनाऊ, तो माँ माँ नहीं माया, वो ऐसा सोचेगा। तो उससे क्या हो, ये कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं सिखाया जाता। और फिर आपके ये टीवी चैनल वाले को मसाला मिल जाएगा, मसाला ये देखो साधु बन गया, न्यूज में आपका हेडलाइन आ जाएगा। तो ऑल दिस आर रबिश इफ यू डोंट नो, वो व्यक्ति जानता नहीं और फिर वो भक्त बनने का प्रयास करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो भगवान अभी तक निष्काम कर्म योग की बात बता रहे थे पिछले कई श्लोकों में, यहां पर भगवान सीधा भक्ति योग का एक पॉइंट डाल दिया है। टेक्स्ट नंबर 30 ऊपर ये प्लीज। हाँ देखो भगवान कितना स्पष्ट, ये ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा है ये श्लोक। भगवान यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, इंग्लिश में आप लास्ट क्या लिखा है, युद्ध करो, है ना, फाइट, युद्ध करो, डायरेक्ट ऑर्डर है यहाँ पर। भगवान स्पष्ट बता दिया युद्ध करो, क्या कह रहे हैं कि अब सब कुछ सारे कर्म मैं सर्वाणी कर्मान, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, स्पष्ट रूप से डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया। विथ फुल नॉलेज ऑफ पेन, मेरा पूरा ज्ञान के साथ, अभी विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, विथ नो क्लेम्स ऑफ टू प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी। ये यहां पर तीनों गुण को कवर कर लिया भगवान ने, देखा आपने। फ्री फ्रॉम लेथर्जी का अर्थ क्या हुआ, आलस का त्याग करो। हिंदी में क्या लिखा है, आलस्य से रहे जो, आलस्य से रहे मीन्स तमो गुण से मुक्त होकर के, राइट। फिर बताया है रजोगुण में विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट और विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रॉफिट, रजोगुण से मुक्त होकर के, और भगवान आत्मा और शरीर के ज्ञान में स्थिर होकर के, फुल नॉलेज, फुल नॉलेज, फुल नॉलेज का अर्थ होता है जब भगवान का फुल नॉलेज आता है वो सतोगुण से पर है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों से मुक्त होकर के तुम विशुद्ध सत्व में स्थिर हो जाओ और युद्ध करो, ऐसा भगवान कहते हैं, और युद्ध करो। दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रपोज सेज इन परपट दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स
समबडी कैन रीड
दिस वर्स The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious, discharge duties as if in military discipline. Such an induction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna.
This is what is required. Dependence on Krishna. कृष्ण पर आधारित रह करके कर्म कर, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। भगवान यही सिखाना चाहते हैं बार बार, मुझ पे आधारित, मई सर्वाणी कर्माणी, मुझ पर आधारित करो। कर्म तुम मेरे लिए करो, फल मैं तुम्हें दूंगा, कर्म तुम मेरे लिए करो, और तुम्हें क्या देना क्या नहीं देना ये मुझ पे छोड़ दो ना, इतना चिंता क्यों कर रहे हो तुम, मैं करूंगा तुम्हारा हिसाब किताब, भगवान स्वयं करेंगे।
Because there is a constitutional provision of the living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord. Because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord.
भगवान को अर्जुन को भगवान के आदेश के प्रति सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम ये कार्य करो, मीन्स खत्म बात, उसको केवल एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान कहते हैं यू डू दिस, अब भगवान से ऊपर तो कोई ऑथोरिटी है नहीं, अब भगवान कहते हैं ये करो तो फिर देयर इज नो वे टू थिंक कि मैं नहीं, आप ये कह रहे हो क्या कह रहे हो, आई एम द अथॉरिटी, आई से यू डू दिस मीन्स टू यू डू दिस, खत्म बात, खत्म हो गई। देयर इज व्हाट कृष्णा इज लुकिंग फॉर, भगवान हमसे यही चाहते हैं लेकिन हम इसको कॉपरेट नहीं कर पा रहे। भगवान हमसे यही चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि डू व्हाट आई से, जैसे मैं कहता हूं वही करो बस, बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो अर्जुन को इस तरह से कार्य करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, अगर ऐसी इस तरह से कोई कार्य करता भी है, मई सर्वाणी कर्माणी, इस तरह से अगर कोई कार्य करता है तो क्या होगा। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं वो निश्चय रहित होकर उद्देश्य को पूर्णतापूर्वक पालन करते हैं, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
हाँ, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए कौन लोग, मई सर्वाणी कर्माने वाले, सब कुछ मेरे, वही ना श्लोक क्या आगे वाला, 30 वाला वही ना, तो सारे कर्म मुझे अर्पण करने वाले होते वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। सो सिंपल अर्जुन, दे डू दिस। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग से भगवान की सेवा करता है और माया भी तो भगवान ने बनाई है, तो अगर कोई माया की सेवा करता है तो वो भी क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, हाँ एक दृष्टिकोण से दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतर इसमें इतना है कि माया से भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाला दुखी रहता है और भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाला सुखी रहता है। बस एक लाइक दिस इज द सॉल्यूशन। तो अगर भगवान के आदेश के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला कोई भक्त है, सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद राइट्स इन द परपट द इंजंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है अमेरिकन
रीड द इंजंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम एंड देयरफॉर इज द इटर्नली ट्रू योर एक्सेप्शन एज द वेदास आर इटर्नल So this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have found faith in this induction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of ignorance. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such order, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the law, but because one is not resentful of this principle and works sincerely with the confusion of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the state of pure Krishna
consciousness. भगवान बताते हैं इसके आगे कि जो अल्टरनेटिव है, जो जो भगवान इस तरह से बताया, इस तरह से अगर वो कार्य नहीं करता, जैसे भगवान ने बताया 31 में कि उसका बंधन से मुक्त हो जाता है सकाम कर्म के फल से, लेकिन जो नहीं करता ऐसा कार्य, टेक्स्ट नंबर 32 में पढ़िए, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुम नहीं करोगे, जो लोग नहीं करते वो लोग क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे सब प्रकार की जिसकी ज्ञान नष्ट हो जाएगी, उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो। लेकिन अभी अर्जुन को बता दिया भगवान, अभी तेरी चॉइस क्या है, मुझे नष्ट हो जाना है या फिर मेरी बात सुनना है, मेरी बात नहीं सुनेगा तो यही परिणाम आने वाला है कि तू नष्ट हो जाएगा। अभी भगवान का ये कथन सुनकर के बलदेव विद्याभूषण ऐसा बताते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो आप भगवान की बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों का भगवान का डर नहीं लगता है, बात नहीं मानेंगे तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि आपके भय से वो लोग भयभीत नहीं होते क्या, तो ऐसे कार्य क्यों करते हैं फिर, इस प्रकार के कार्य। तो भगवान इसके कंटिन्यूशन में दो श्लोक बताते हैं, 33 और 34 पढ़िए दोनों।
Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from the three modes, what is impression, formation. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion, because they are stumbling blocks in the path of self-realization.
भगवान कहते हैं कि इसका उत्तर ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, और ये स्वभाव उनको कहाँ से प्राप्त होता है, तीन गुणों की संगत के माध्यम से ये स्वभाव उनको प्राप्त होता है, और इस तीन गुणों की संगत से वो व्यक्ति दो प्रकार में फंस जाता है, या तो राग में फंसता है या द्वेष में फंसता है। द्वंद्व, राग का अर्थ होता है अच्छा लगना, मुझे अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति यही कार्य कर रहा है, और कि जो मुझे अच्छा है वो मैं करूंगा, और द्वेष जो नहीं अच्छा वो, और यहाँ पर कंप्लीटली ऑपोजिट चल रहा है सब कुछ। कैसे चल रहा है, जो चीज हमें पसंद है वो हमें कभी नहीं मिलती, और जो हमें नहीं पसंद है वो हमेशा मिलता है, ऑपोजिट। लेकिन ये राग और द्वेष में फंस जाता है वो व्यक्ति। 34 में भगवान ने बताया ना कि राग के कारण वो व्यक्ति दौड़ता है और ज्ञान को आध्यात्मिकता का द्वेष करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसका द्वेष करना चाहिए उसका राग करता है, और जिसका राग करना चाहिए उसका द्वेष करता है। आप समझे, राग का अर्थ होता है आसक्ति, अनुराग, कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पसंदगी, और द्वेष का क्या अर्थ होता है, त्याग कर देना। द्वेष का अर्थ क्या है कि नहीं पसंद है, 4:30 बजे उठना नहीं पसंद, 16 माला जप करना नहीं पसंद, 4 नियम का पालन करना नहीं पसंद, तो इसको द्वेष करता है, जिसको राग करना चाहिए था उसको द्वेष करता है,
और राग क्या हमें लगता है मुझे सब प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त हो, मुझे ये सुविधा प्राप्त हो, मुझे वो सुविधा प्राप्त हो,
सो दैट इज राग। लेकिन उसको एक्चुअली उसको द्वेष करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समस्या अटक गई। तो ये राग और द्वेष के कारण व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने क्या कहा, इसे मुक्त होने का प्रयास करो। भगवान ने कहा कि इसे मुक्त होने का प्रयास करो, क्यों? क्योंकि मुक्ति कोई अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो राग और द्वेष उसके सामने बहुत बड़ी बाधा बनेंगे, है ना। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, लास्ट लाइन में यही था राइट, बहुत बड़ा अवरोध होगा। क्या? राग और द्वेष इज अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। सो कई आचार्य हमारे कहते हैं ऐसा कि द सेंसेस आर अट्रैक्टेड टू द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारी इंद्रियां जो है वो संसार के सुखों के प्रति आसक्त होती है, इसके प्रति राग होता है, स्पेशली सेक्स एंड वेल्थ, कनक और कामिनी, इसके प्रति अधिक। और इसको ठीक किया जा सकता है तीर्थ धाम की यात्रा करके, उपवास करके, फिर गुरु की शरण में जा करके, ये सब है ना, जैसे तीर्थ में जा दान करते हो, त्याग करते हो, उपवास करते हो, तो इससे कनक और कामिनी की इच्छा नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका हम द्वेष करते हैं, और जहां द्वेष नहीं करना चाहिए वहां द्वेष करते, जहां राग नहीं करना चाहिए वहां राग करते। सो इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट यही होगा इवन भक्तों के लिए भी कि अपने अपने निजी कर्तव्य का पालन किया जाए। अगर गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु आपको कहेंगे ये करो ये करो, ये मत करो ये मत करो, तो जिसको हम राग करते हैं उसको द्वेष कराएंगे गुरु, और जिसको हम द्वेष करते हैं उससे राग करवाएंगे। तो भगवान 35 में इसको कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म के ऊपर ध्यान दो। पढ़िए 35।
अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है।
भगवान कहते हैं कि अगर तुम नियमित वेदों के विधि विधानों का नियम का पालन करते हुए अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हारा मुक्ति निश्चित है। अपना निजी कर्तव्य कर्म है उसको करो मेरे आदेश के अनुसार, और फल मुझे अर्पण कर दो। इस तरह से कर्म को त्याग मत करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य तो भयानक है। स्वधर्म निगुणो क्षय परधर्म भयावह, परधर्म क्या है, हाँ
परधर्म
लास्ट लाइन, स्वधर्म निदान श्रेय परधर्म भयावह। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का काम करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्राह्मण बेचारा हत्या नहीं कर सकता किसी की, उसके हाथ से किसी की हत्या नहीं हो पाएगी, ऐसे बहुत रेयर केस में होते हैं। ऐसे कई ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोण ब्राह्मण था लेकिन वो क्षत्रिय बनने का गलती किया, तो उसका जमा नहीं कुछ, और उसका वध भी इसी आधार पे हुआ। ब्राह्मण का हृदय था, बोल दिया सत्ता मर गया, तो क्षत्रिय होता तो सीधा प्रतिशोध लेता, लेकिन वो क्षत्रिय तो था नहीं, तो ब्राह्मण था तो उसने प्रतिशोध नहीं लिया। तो इसलिए दूसरे के कर्तव्य में दखलगिरी मत करो, अपना जो कर्तव्य है उसको पकड़ के काम करो, तभी तुम्हारी सफलता होगी। यस, अभी सब शुद्र है लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग, अपने अपने गुणों अपने अपने कर्म के आधार पर उसकी वृत्ति होती है, लेकिन संस्कार कोई करता नहीं, इससे सब दूसरे माने जाते। भक्त भी अपनी जो सेवा है वो सेवा छोड़ करके दूसरों की सेवा में अगर टांग लगाएगा तो परिणाम यही आएगा कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, अगर मैं ऐसा करता हूं मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, और दूसरा भी परेशान हो जाएगा। मेरी जो सेवा है उसको मुझे अच्छे से करना है, परधर्म भया हुआ परधर्म दूसरे की सेवा है। ऑफकोर्स कृष्ण की सेवा है, सब कुछ कृष्ण की सेवा है, लेकिन जब तक आपको बताया ना जाए तब तक आपको इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। सहायता कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, सहायता करो, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। जो सेवा हमने दी गई है उसी सेवा को ध्यान में अच्छे से करो ना, उसी सेवा को नंबर वन बना करके दिखाओ ना, कि वर्ल्ड में लोग देखे आएंगे कि ये सेवा इतना अच्छा हो रहा है अहमदाबाद में, पीपल कम एंड सी यू, भगवान खुद आकर्षित होकर देखे। अपनी सेवा को अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद ऐसा भी कहे थे कि एवरी डिवोटी, सभी भक्तों को अपनी सेवा को विषय में ऐसा सोचना चाहिए कि ये सेवा के लिए भगवान ने मुझे चुना है और ये भगवान के द्वारा पर्सनली दी गई सेवा है, तो मुझे इसको नंबर वन क्वालिटी से करने का प्रयास करना चाहिए। अब समझे सेवा का अर्थ क्या हुआ, सामने कुछ मांगने का नहीं, उसको सेवा बोलते हैं। सामने कुछ मांगोगे तो फिर वो बिजनेस हो जाता है, वो डील हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करो, दूसरे की ड्यूटी में दखलगिरी नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई आपके लिए है, दूसरों को मत दो। आप दूसरे की दवाई लेते हो, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें सिर दर्द था कितने दिन पहले, बोले 6 साल पहले हुआ था सिर दर्द। अच्छा कौन सा दवाई था, ये लाओ, तो तुम्हारे काम में नहीं आएगी वो दवाई। तो जो जिसके दवाई है उसको उसी के आधार पे देना चाहिए। सो नाउ अर्जुन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्स्ट यस सबसे पहले दूसरे की ड्यूटी को तभी आप इंटरफेयर कर पाओगे जब आप अपनी ड्यूटी को समझते हो। आपकी ड्यूटी क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। आज के समय में कलयुग में सबका एक ही ड्यूटी हो रहा है, एकदम लोअर लेवल ड्यूटी, फैमिली मेंटेनेंस लोअर लेवल। अभी ये ड्यूटी के कारण उससे वो मुक्त नहीं हो पाता है तो आगे क्या ड्यूटी करेगा, वो एक ही ड्यूटी को पकड़ के बैठे। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने स्वभाव में अनुकूल नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ स्वभाव से बद्ध है, मटेरियल कंडीशनिंग, तो वो कंडीशनिंग से मुक्त होकर के कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए और रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए गुरु के आदेश का। तो क्या होगा, गुरु फिर हमें क्या करेंगे, हमें राग और द्वेष से मुक्त कराएंगे, और राग और द्वेष से मुक्त कराएंगे फिर वो कंडीशनिंग हमारा होगा वो चला जाएगा, वो कंडीशनिंग चला जाएगा हमारी अवस्था हमारा स्वभाव, तो फिर आप कृष्ण भक्ति में कोई भी ड्यूटी होगी वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इन राइट नाउ टुडेज वर्ल्ड एवरीवन शुड फॉलो ओनली वन ड्यूटी दैट, अगर हमारा एकदम ग्राउंड लेवल पे बात करें जैसे प्रभुपाद ने बताया, फल भगवान को अर्पण करो, कर्म आप जो करते हो वो करते रहो, दैट इज द ओनली ड्यूटी। कर्म आप जो कर रहे हो, अगर कोई धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सो लाइक दैट, दैट इज द ओनली वे।
Where do we really stand? Like,
according to guna and karma. If I am more into fighting nature, so मेरा गुण क्या हुआ, युद्ध वाला, I mean क्षत्रिय ब्लड है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, I mean there are some different gunas, qualities are there. कोई होता है कि वो no, never by birth. Krishna has not made this institution by birth, by quality and activities. जैसे झाड़ू करना, सफाई करना, लेबर वर्क करना, तो देर इज क्वालिटी एंड एक्टिविटी। सो प्रैक्टिकली आप उसको शूद्र बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्मा। वो कोई प्रोफेसर है, कोई विद्वान है, कोई साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, तो ऐसा व्यक्ति क्वालिटेटिवली ब्राह्मीण जैसे दिख रहे हैं। कोई आर्मी मैन है, कोई मार्शल आर्ट का वो है टीचर, तो उसका काम क्या, वो क्षत्रिय हुआ क्वालिटी से। बट वाई कलो सूत्र संभव है, क्योंकि ये सबके सब लोग जो होते हैं वो कोई संस्कार को फॉलो नहीं करते, और ये लोग अनार्य है क्योंकि उनकी लाइफ में भगवान नहीं है, इसलिए इनको शुद्ध संभव बोला गया है, इसलिए दे आर ऑल शुद्रस।
और एक लेक्चर में मैंने सुना था, दादा गुरु महाराज ने उनका ऐसे बोला था कि शादी में आप और कुछ चेक करो या ना करो, पर वर्ण सेम होना चाहिए, तो उसका क्या?
महाराज इसलिए बताए होंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भले ही 100% एक्यूरेट ना आता हो आज, लेकिन जितना भी छोटा मोटा एक्यूरेसी आती है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें ये वर्ण जैसे चित्र कोई भी ज्योतिष देख सकता है, कोई भी ज्योतिष देख सकता है। तो इसलिए अगर वो वर्ण चेक किया जाए शादी के पहले, तो क्लैश नहीं होगा वर्ण। सो ये दिस इज रिक्वायर्ड, जो संस्कार को फॉलो करते हैं, ये संस्कार में आता है सब, विवाह संस्कार में ये चेक किया जाता है कि वर्ण कौन सा है। तो ये संस्कार चेक करेंगे तो फिर दे हैव टू फॉलो द प्रोसेस, उनको वर्ण चेक किया जाता है। अब उस समय अगर हम वहां पर जाके बोल दे किसी व्यक्ति को ये सब तो बेकार है, ये वर्ण कोई भगवान, तो वो क्या करेगा, आपकी बात मान लेगा, वो वर्ण वर्ण के चक्कर से छुटकारा लेगा, शादी का कोई फेरा फेरा कुछ करेगा नहीं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेगा। तो क्या परिणाम आया, आपने उनका परेशान कर दिया उसको, isn't it? You spoil his life. वो संस्कार फॉलो करने वाला था, आपने मना कर दिया, ऐसा हो जाएगा। सो अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, पूछिए क्या है प्रश्न अर्जुन का।
अर्जुन ने कहा, हे वसुदेवजी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा
है। हाँ, ये प्रश्न 99.9% लोग को होता होगा। अर्जुन ने ये प्रश्न जो पूछा है, कई बार भक्तों को भी ये प्रश्न होता है कि अगर आप इसको कनेक्ट करो पीछे के श्लोकों के साथ, अर्जुन का क्वेश्चन कैसे कनेक्ट होता है कि राग और द्वेष इससे मुक्त होने के लिए हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करनी, ऐसा भगवान ने बताया, राइट? अभी अभी हमने चर्चा की, यू आर इन फ्लो, आप समझ पा रहे हो इस बात को? यहाँ का जो श्लोक है वो कंटिन्यूएशन में है, अचानक से मन में कोई पॉपअप नहीं हुआ श्लोक। अर्जुन का जो प्रश्न है ना, वो कोई अचानक से कहीं प्रकट नहीं हुआ है, वो उसके कंटिन्यूएशन में है। वो क्यों कंटिन्यूएशन में है, पिछले के अगर तीन श्लोक अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे क्या क्या बताया है। कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। अपने स्वभाव के कारण और राग और द्वेष से ग्रस्त है और इसलिए उसको अपने नियत कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए गुरु के आदेश का पालन करते हुए। अभी गुरु के आदेश का पालन करने में क्या आता है कि हमें करने का कार्य और नहीं करने का कार्य दोनों बताया जाता है। अब क्या होता है, गुरु ने जो कार्य मना किया था वो कार्य चाहते हुए भी हम कर रहे, नहीं चाहते हुए भी हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अर्थात मनुष्य पाप नहीं करना चाहता फिर भी पाप कर रहा है। गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ये करो, वो करो, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं। वो जानता हूं, कथा सुना है हजार बार, कई हजार यात्रा अटेंड की है, कई लेक्चर अटेंड किए है, कई हमने बहुत सारे महिमा सुने है शास्त्रों का, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न अर्जुन का है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है प्रभु, ये बिल्कुल पता है कि ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से धक्का मार के मुझे कोई कार्य करवा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे बलपूर्वक कार्य करवा रहा है। मैं तो नहीं चाहता लेकिन कार्य कर बैठता हूं, फिर ऐसा लगता है कि ये क्यों किया मैंने, ऐसा कार्य क्यों किया मैंने, बाद में लगता है ऐसा। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत वैलिड है, राइट? ऐसा होता है, सबको होता है ऐसा कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं, क्यों करता हूं मैं कार्य? तो भगवान इंस्टेंट तुरंत जवाब दिया उसके नेक्स्ट श्लोक में, पढ़िए।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है कि बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शब्द है।
सीधा परफेक्ट सॉल्यूशन, भगवान ने बताया क्या है प्रॉब्लम, काम, इच्छा, भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा, काम। काम एष क्रोध एष, कहां से जन्म लेता है? रजोगुण समुद्भव। ये काम ही ऐसा बड़ा शत्रु है। काम दो रूप से, काम शब्द के दो रूप, दो उपयोग हो सकते हैं। एक होता है सेक्स डिजायर, लेकिन दूसरा इसका अर्थ क्या है, कोई भी भौतिक इच्छा। क्यों ऐसा, कोई बता सकता है क्यों ऐसा, क्या अंतर है? और हाँ सेम हुआ, और
स्वतंत्रता चाहिए,
ये दैट्स ऑल्सो गुड, दोनों में स्वतंत्रता चाहिए। फिर आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं, ये भोगता हूं, अहंकार के वश। काम बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक। काम एक ऐसा शत्रु है, इसको विद्या लास्ट लाइन में क्या है, महाशनो, महाशनो का अर्थ होता है बहुत भूखा है। आप कभी भी ये सोच रहे हो कि मेरी एक भौतिक इच्छा पूरी हो जाए या मैं एक इंद्रिय भोग कर लूं तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये गलत है, इसका ऑपोजिट होता है। काम की तृप्ति करने का अर्थ होता है अग्नि में घी डालना। आप अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे तो आपकी इच्छा दो गुनी डबल हो जाएगी। अगर आप, अगर मैं मेरी सेक्स डिजायर को फुलफिल करने का इच्छा करता हूं, प्रयास करता हूं, तो मेरी इच्छा तगड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इच्छा जो है, भौतिक इच्छा है, उसको उपवास करवा देना चाहिए, निर्जला कर बैठो, तो कुछ खाना पीना मिलेगा ही नहीं, खाना पीना मिलेगा नहीं तो शक्ति चली जाएगी, और शक्ति चली जाएगी तो अपने आप घर छोड़ के चली जाएगी। इधर तो कोई भाव देता ही नहीं है, इधर तो कोई खाना मिलता ही नहीं है, किसी और जगह जाके, है ना। तो भौतिक इच्छाएं जो होती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, विशेष करके सेक्स, काम वासना इसलिए महत्वपूर्ण है भौतिक संसार में, क्योंकि सारी बाकी सारी इच्छाएं इसके सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में है। एक एक यू नो किसी ने एक पोस्टर अपलोड किया था, आई वॉज सोशल मीडिया के ऊपर, अब मैं देख रहा था, एक व्यक्ति था ऑफिस में, इतना परेशान था, बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी और टेबल के ऊपर पसीना पसीना होकर के सिर रख दिया था। और उन लोग का मोटिवेशन क्या था काम करने का, नीचे दूसरा पिक्चर था, तो उसमें अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी का फोटो था, बोले दिस इज योर मोटिवेशन वर्क, वो खड़ा हो जाता है एंड ही वर्क्स। हर एक व्यक्ति इसी के आजू बाजू काम करते, इसी के आजू बाजू, दिस इज द सेंटर पॉइंट मटेरियल। जैसे ही सेक्स डिजायर हटा दी जाए मटेरियल वर्ल्ड में से, तो ये मटेरियल वर्ल्ड भौतिकवादी लोगों के लिए सूखा बन जाएगा, सूना खाली खाली हो जाएगा, बोले कुछ बचा ही नहीं, अब तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में, अब तो क्या जिएगा कोई, वो ऐसा सोचने लगेगा। सो काम महाशनो, महाशनो का अर्थ होता है बड़ा भयानक भूखा है, कितना भी आहुति देते रहो इसके अंदर फैमिली के फैमिली खत्म हो जाते हैं, है ना, एक छोटी सी बात में कितना हत्या हो जाती है, जस्ट फॉर वन रिलेशन, एक रिलेशन को यू नो भोग करने के लिए कितना होता है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरा खानदान खत्म हो जाता है। महापापमा का अर्थ होता है अधम से अधम पाप करवा देता है, संत लोगों का यू नो हत्या करवा देता है, पिता समान पेरेंट्स का हत्या करवा देते हैं, महापापमा। जैसे अभी वो कौन सा, वो दिल्ली में बहुत पहले हुआ था एक रेप केस हुआ था ना, जिसमें वो लड़की जो मर गई थी बाद में, इज़न्ट इट, निर्भया राइट, उसकी एक तुच्छ वासना वो व्यक्ति की उसको फुलफिल करे, उसका कोई वैल्यू नहीं है तुच्छ वासना का, वो तुच्छ वासना फुलफिल करने के लिए कितनी हद तक उसने पाप से पाप, एक के ऊपर एक पाप करते गए, इज़न्ट इट, कितना पाप किया उसने, महापाप मा, ऐसे ऐसे काम करवाता है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। महाशनो महापापमा विद्यनम यह वैरिणम, बहुत बड़ा शत्रु है जीवात्मा का, बहुत बड़ा शत्रु। यू नो वाई, शत्रु क्यों है बहुत बड़ा शत्रु, क्योंकि इस काम के कारण जो सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहली जो इफेक्ट आती है ना काम की, सेक्स डिजायर की जो सबसे पहली इफेक्ट आती है हमारे माइंड में, वो क्या आता है पता है, वी फॉरगेट कृष्ण, हम कृष्ण को भूल जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट, पहला इसका रिएक्शन आता है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। और किसी भक्त के लिए, किसी साधक के लिए इससे महान कोई लॉस नहीं हो सकता है, एक क्षण के लिए भगवान को भूलना, दैट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर अ डिवोटी। इसलिए इसका सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट संबंध है, इसलिए इसको सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, वेरी बड़ा भयानक शत्रु है, महाशनो महापापा। राजनीति में क्या होता है कि कोई शत्रु होता है ना, तो उसके लिए अलग अलग विधान दिए गए, साम दाम भेद और दंड, ये चार है, आपने शायद सुना होगा, साम दाम भेद दंड। जिसमें क्या होता है कि अगर समझ लो कि आपका एक शत्रु है, तो सबसे पहले उसके साथ मंत्रणा करो, साम, शांति से समझाओ उसको, ठीक से शांति से प्यार से समझाओ उसको कि ये अच्छा नहीं है, इस तरह से करना चाहिए पीसफुली। अगर वो काम नहीं करता, इस तरह से अगर काम नहीं हुआ, तो क्या करो फिर, उसको दाम दो। दाम कैसे होता है, देखो वो चीज तुम छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, तुम कश्मीर छोड़ दो तो मैं तुम्हें सारे विश्व से लोन दिलवा सकता हूं, अमेरिका से पैसा 31,000 करोड़ जो है ना, वो तुम्हारा वापिस शुरू करवा सकता हूं, लेकिन कश्मीर भूल जाओ। इसको बोलते हैं दाम, दाम एल्यूरमेंट, ये ले लो वो दे दो ऐसा वाला। हाँ हाँ, लेकिन ये तरीका है। कंस का क्या हुआ था, कंस देवकी को मारने वाला था, तो देवकी को लेकर के जा रहा था, सब लोग आश्रम में ये असुर देवकी वसुदेव को लेकर जा रहा है, बोले बात हजम नहीं हो रही है। कंस देवकी वसुदेव का रथ खुद चला के जा रहा है, तो नारद मुनि या कुछ देवताओं ने सोचा, बोले इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी बड़ी जोर से हुई, विशेष करके दो तीन शब्द को बहुत जोर से बोला गया। कौन से शब्द को बोला, कंस यू आर फूल, जोर से, यू आर सच अ फूल, यू आर सच जर्क, तू ऐसा बदमाश है, तू ऐसा मूर्ख है कि अपनी ही बहन जिसका आठवां बेटा तेरा वध करने वाला है उसको खुद ही लेके जा रहा है, और इसका बेटा तेरा आठवां बालक इस तरह वध करने वाला है। आई मीन लाउडली, तो कंस जो था वो तुरंत मारने पे तुला है, जिसे असुर एक मिनट पहले बहन मेरी बहन कर रहे थे, और बाद में कौन बहन, सीधा तलवार निकाला, खत्म करो इसको, लाइक दैट। तो वसुदेव ने सोचा कि पहले इसको शांति से समझाने का प्रयास करो, भले इसने तलवार हटा दिए, पहले उसको कहा कि कंस ऐसा मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, शांति से समझाया। फिर वसुदेव मन में सोचने लगे, सो एक्सपर्ट कृष्ण के पिता, मन में सोचने लगे, ए शाम से तो कुछ हुआ नहीं, अब दाम का ट्राई करते। तो फिर दाम किया, तुम्हारी प्रॉब्लम कहां पर है, देवकी के आठवें बालक से है ना, देवकी से तो नहीं है। बोले हाँ ये बात तुम्हारी सही है। बोले अगर मैं तुम्हें देवकी का आठवां बालक जन्म होते ही तुम्हें वापस दे दूं, तो बच्चा तो तुम्हारी थोड़ी वध करेगा, दाम प्रॉमिस है मेरा, मैं तुम्हें दे दूंगा जितने बाद। बोले नहीं पहले और कोई, बोले सारे बालक दे दूंगा, और मैंने बार्गेनिंग किया तो बोले सारे बालक दे दूंगा, अब तो देवकी को छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, देवकी को नहीं मारा। तो इमीडिएट डेंजर जो था वो खत चला गया। होता है ना कई बार हम लोग ऐसा देखते, कई बार कुछ होता है बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको बोलते एक काम करो, इस बात के विषय में 6 महीने के बाद चर्चा करते। क्यों, अभी 6 महीना तो शांति रख भाई, 6 महीना कुछ करे शांति से, फिर अच्छा 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे इसके विषय। तो इस तरह से कंस ने वसुदेव ने ये किया था, लेकिन काम के विषय में ना शाम चलता है ना दाम चलता है, और भेद भी नहीं चलता, डिवाइड एंड रूल नहीं होता, ये तीसरा होता है डिवाइड एंड रूल, भेद, दो लोग का अच्छा बन रहा है तो उसको भी दोनों को आपस में भिड़ा दो और डिवाइड कर दो, फिर आप राजा बन गए, ये डिवाइड एंड रूल, ये तीसरा होता है। और चौथा क्या होता है, दंड, शाम दाम भेद और दंड, सीधा पनिशमेंट। तो काम के लिए ना शाम चलता है ना दाम चलता है ना भेद चलता है, काम के लिए एक ही चलता है, क्या, दंड चलता है। दंड क्या है, उसकी बात मत मानो, दैट इज द ओनली पॉसिबल, पर वो जो बोले वो नहीं करने का, सिंपल। सो प्रभुपाद सेज, इफ देयरफॉर द मोड ऑफ पैशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिग्रेडेड इनटू द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज एलिवेटेड टू द मोड ऑफ गुडनेस बाय द प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग देन One can be saved from the degradation of wrath of spiritual by spiritual attachment. काम का कैसा है कि अगर वो पूरा नहीं होता है ना तो क्रोध आता है, काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, वो था ना कामेश क्रोध है, क्या था, नहीं नहीं उसके पहले सेकेंड चैप्टर में, कामाद क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध। आप सोचिए काम पूरा होता है तो लोभ आता है, और काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, तभी जिसको जो लोभी है या क्रोधी है वो सुखी कैसे हो सकता है, सीधा सा फॉर्मूला है ना। काम वासना आप पूरी करते हैं तो इससे लोभ आता है और इच्छा आ जाती है, लोभ लगता है उसमें, लोभ आ जाता है। लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। तो जो लोभी है या क्रोधी है वो सुखी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात जो व्यक्ति काम से परायण है, काम से वश है, वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और उसका तीन डिग्री बताइए भगवान ने भी, पढ़िए 38।
इस प्रकार अभी धुएं से, दर्पण धूल से अथवा धूल बर्बाद से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है।
ये कवरिंग है। जिस तरह से धुएं से अग्नि ढक जाता है, आवृत रहता है, धूल से आईना और एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है वो गर्भ से आच्छादित है, तो तीनों अलग अलग कैटेगरी के कवरिंग है। तीनों अलग अलग कैटेगरी है, राइट। जिसमें सबसे मजबूत कैटेगरी कौन सी है, अर्थात जो कवरिंग है सबसे हार्ड कवरिंग कौन सा है? माता का गर्भ है ना, उसके अंदर बच्चा होता है ब्रेन, तो वो सबसे तगड़ा है वो कवरिंग, राइट। फिर उससे स्टेप डाउन ऐसा कौन सा है, बाकी दो बचे ना, तो उसमें से थोड़ा कमजोर है वो कौन सा है? धूल और दर्पण। और जो सबसे कमजोर है कवरिंग वो है धुआं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने तीन अलग अलग कैटेगरी बताई है, ये ग्रेजुअल है। जैसे मनुष्य के लिए जो एग्जांपल, मनुष्य के लिए जो एग्जांपल यहाँ पर सेट होता है, फर्स्ट कवरिंग, जिसमें क्या होता है कि अग्नि कहीं कहीं दिखता है, ऐसा नहीं कि अग्नि दिखता ही नहीं, अग्नि कहीं कहीं दिखता है धुएं के कारण, फिर भी अग्नि दिखता है, इसलिए वो सबसे कम कवरिंग माना जाता है। तो प्रभुपाद इसकी तुलना कर सकते हैं मनुष्य शरीर के साथ। हम जिस तरह से काम अज्ञानता से आच्छादित है, काम से आच्छादित या अज्ञानता से आच्छादित, वो है धुआं का उदाहरण। उससे आगे का थोड़ा मजबूत होता है, वो क्या होता है? मिरर। मिरर में क्या होता है कि हमें शेप पता पड़ता है कि ये शेप है मिरर का, लेकिन देख नहीं पाते, कवरिंग धूल है तो दिखता नहीं, लेकिन पता पड़ता है कि इधर मेरा चेहरा आना चाहिए, वो हमें पता पड़ता है। तो उसकी तुलना प्रपात कर रहे हैं वृक्ष के साथ, ट्रीज प्लांट्स, उन लोग की अज्ञानता, चेतना जो होती है वो डाउन हुई, मनुष्य से वृक्ष में डाउन हुई, उनके पास हमारे जैसी चेतना नहीं है। वृक्ष नहीं, एनिमल्स आते, वो सेकंड एनिमल्स है, उनकी चेतना स्टेप डाउन हुई। और गर्भ में जो बच्चा है उनकी अज्ञानता उससे एक स्टेप और डाउन हो गया, उनकी चेतना डाउन हुई। कैसे? क्योंकि गर्भ में जो बच्चा होता है बिल्कुल दिखता ही नहीं कि वो कहां पर है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो वो वृक्ष पौधे इत्यादि की साथ उसकी तुलना हुई, चेतना का विकास। तीन अलग अलग कैटेगरी में है यहां पर। प्रभुपाद इज गिविंग दिस एग्जांपल, कवरिंग ऑफ लस्ट। सो नाउ टेक्स्ट नंबर 39 में उस शत्रु की बात चल रही है ना, तो शत्रु को फिर भगवान प्रभुपाद कृष्ण आगे बताते हैं। पढ़िए।
इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके कामों के नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी पुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
हाँ, तो ये जो शत्रु है काम, जो शाश्वत शत्रु है, वो निरंतर जलता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता।
काम इच्छा से कोई लेना देना
नहीं। काम इच्छा को आप अज्ञानता के साथ समझ सकते हो, अज्ञानता अर्थात काम के कारण वो व्यक्ति, हाँ, काम इच्छा, काम का एक अर्थ होता है कि वो भोक्ता बनना चाहता है, तो भोक्ता बनने का अर्थ क्या हुआ? अज्ञानता हुई। तो चेतना का विकास धीरे धीरे धीरे, और दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे मनुष्य है तो उसकी सबसे पतला लेयर बताया ना धुआं का, तो उसमें कहीं कहीं अग्नि दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर थोड़ा सा टेक केयर किया जाए तो धुआं साइड में हटा करके अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। इस तरह से अगर मनुष्य किसी संत के पास जाकर के शास्त्र का नियम का पालन करके सकाम कर्म निष्काम कर्म फॉलो करके अपनी चेतना को ला सकता है, लेकिन पशु और वृक्ष इन लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए या दे हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट बर्थ, इसलिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई है। होता ही है, वृक्ष में भी काम अच्छा होता है, बट वो हम वो नोटिस हम बिकॉज हम हमारी चेतना अलग है उनकी चेतना अलग है तो हम समझ नहीं पाते। वो सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन उनकी चेतना ढकी हुई है बस। ओके, सो जब आप शत्रु से भयभीत होते हो तो फिर आप सोचते हो ना भाई अभी शत्रु आने वाला है, इधर मुझे आक्रमण करने वाला है, तो कहां पर रहता है भाई वो तो चेक करो, शत्रु रहता कहां पर है और इतना भयानक कैसे हो गया वो, तो शत्रु कहां पर रहते हैं उसके विषय में भगवान आगे बता दे। पढ़िए, हाँ भाई, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस, मोर्चा है, मोर्चा काम का, कौन सा मोर्चा है, इंद्रियां, फिर मन और बुद्धि। तो सबसे पहले स्थूल होता है, इंद्रियां तो स्थूल होती है, और फिर मन और फिर बुद्धि। तो इस तरह से काम एंटर करता है, तीनों जगह ऑक्यूपाई किया। सबसे पहली ऑक्यूपाई वो कहां करता है, पहला गेट तोड़ देता है शत्रु, इंद्रियों का गेट। कैसे तोड़ता है, आंखों से, आंखों से आप गंदी चीजों को देखोगे, कानों से गंदी चीजों को सुनोगे, नॉवेल पढ़ोगे आप, सारे इनपुट से इधर से आता है, सब इंद्रियों के माध्यम से सब अंदर आता है, आपके अंदर काम का एंटर होता है, एंट्री। आपने कोई चित्र देख लिया तब आपका मगज भ्रमित हुआ, अजामिल ने किसी को वेश्या को देख लिया तब उसका चित्त भ्रमित हुआ। तो इनपुट, तो सबसे पहला अटैक किधर होता है, इंद्रियों के ऊपर, फिर इंद्रियों से सेकंड अटैक फिर मन के ऊपर आ जाता है, और मन के अंदर बैठ जाता है, तो मन फिर वही करवाता है जो इंद्रियां मन का काम करती है। उससे भी आगे चला जाता है बुद्धि, अच्छा क्या बुरा क्या वो पावर भी चला जाता है। तो ये तीन उसके स्ट्रेटेजिक प्लेस है काम के। तो उसको काम इतना सरल सूक्ष्म होता है, अगर समझ लो किसी व्यक्ति के मन में काम है और आपके पास से गुजर रहा है तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे किसके मन में काम वास्ता है। अगर उसके मन में क्रोध है तो तुरंत दिखेगा उसके मुंह पे, बोले गुस्से में जा रहा है, लेकिन काम जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहला अटैक स्थूल चीजों पर करता है काम, उसके बाद सूक्ष्म पर करता है। सो सबसे पहले कहाँ हमारा आक्रमण कहाँ होना चाहिए, बुद्धि पे होना चाहिए, मन पे होना चाहिए या इंद्रियों पे होना चाहिए, कहाँ सबसे पहले है? हाँ पढ़ो, अभी भगवान खुद ही बताएंगे कहाँ पर अटैक करना चाहिए हमें।
इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।
भगवान बताया सबसे पहला अटैक करो इंद्रियों के ऊपर, उसको ही दमन कर दो, एंट्री उसका खाना पीना बंद हो जाएगा तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अगर इंद्रियों का वश नहीं हुआ तो फिर मन को वश में करो, और मन का वश नहीं हुआ तो फिर बुद्धि को वश में करो, ऐसा हो जाए। इधर तक पहुंच गया है तो फिर बुद्धि का, लेकिन उसका कम से कम उसका इनवर्स जो है ना, इनफ्लो अंदर आने का, उसको रोक लो। इसलिए बोलते हैं ना चार नियम का पालन करो, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियों को संयमित संयम में लाओ। ये भगवान ने स्ट्रेटेजी बताई इस तरह का। अभी नेक्स्ट दो श्लोकों में भगवान ये चैप्टर को समराइज करते हैं। पढ़िए दो श्लोक, जस्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर।
कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर।
यस अभी नेक्स्ट श्लोक।
इस प्रकार के महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना रूप से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो।
यस तो क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या काम है ना वो रिश्वत देगा, फिर मन को रिश्वत देगा, इंद्रियों को रिश्वत देगा और तुम्हें मूर्ख बनाएगा और परिणाम ये आएगा कि तुम हार जाओगे उसके सामने। इससे अच्छा है कि इंद्रियों को सबसे पहले रोक लो। फिर भगवान ने 42 में जो बताया स्टेज कौन से, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। इसलिए सबसे पहले मन को इंद्रियों को वश में लाने का प्रयास करो। प्रभुपाद के तात्पर्य प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि अगर आप इफ बाय इंटेलिजेंस वन एंगेज माइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय कंप्लीट सरेंडर टू द पर्सनल ऑफ गॉड हेड, तो ऑटोमेटिकली मन जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है भगवान की सेवा करने से। और जो इंद्रियां सांप की तरह जिसकी तुलना की जाती है वो ऐसी इंद्रियां हो जाएगी जिसके दांत निकाल लिए गए, फिर वो इंद्रियां आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको काटेगी नहीं, ऐसी इंद्रियां हो जाएगी। तो भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान की सेवा में ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि वो इंद्रियों या काम से प्रभावित नहीं होते। यही उनका रीजन है क्योंकि पास कृष्ण परम दृष्टवा अनुवर्तते, हायर टेस्ट है तो लोअर टेस्ट के पास क्यों जाएगा वो। और सेकंड लास्ट चैप्टर, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए चैप्टर का, थर्ड चैप्टर ऑफ द भगवद्गीता। One may not give up. Yes. So this is the sum total of भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान के विषय में बहुत बात की है कि ज्ञान होता है तो व्यक्ति अपने आप को ठीक कर पाता है। अभी चौथा अध्याय जो होगा वो पूरा इसके आधार पर होगा, ज्ञान के आधार, इसलिए इसका तात्पर्य टाइटल दिया है प्रभुपाद ने ज्ञान योग। सो वी विल डिस्कस आफ्टर जन्माष्टमी दिस फर्दर डिस्कशन ऑन चैप्टर 4। So, thank you very much.